नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सांद्र स्टूब ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिए गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सीबीएसई ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में कल से 11 तारीख तक होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द की। अमरीका ने भारत को फिलहाल समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी और भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सांद्र स्टूब ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिए गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों के बीच मजबूत मैत्री की पुष्टि की गई। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और फिनलैंड की मित्रता परस्पर सम्मान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक शांति सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने इस वर्ष आयोजित होने वाले वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की भारत की मेजबानी की सराहना की। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने वर्ष 2030 तक भारत और फिनलैंड के बीच मौजूदा व्यापार दोगुना करने के लक्ष्य पर भी सहमति व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि 5G, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकी सहित डिजिटल बदलाव को प्राथमिकता क्षेत्र बताया, जहां परस्पर भरोसे और लाभ पर आधारित सहयोग बढ़ाया जा सकता है।
दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पेशेवरों, छात्रों, उद्यमिता, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों सहित प्रतिभाओं की गतिशीलता को सुगम बनाने की उम्मीद है। साथ ही भारतीय छात्रों के लिए इंटर्नशिप और अध्ययन के बाद रोजगार के अधिक अवसरों सहित बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की भी उम्मीद है।
श्री सीबी जॉर्ज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया। श्री जॉर्ज ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का आज 7वां दिन है। ईरान और अमरीका तथा इसराइली सेना की ओर से ताजा हमलों की खबर है। एक रिपोर्ट।
इसराइली रक्षा बलों ने बताया कि ईरान की ओर से कई मिसाइलें दागी गईं। बहरीन ने भी कहा है कि ईरान ने राजधानी मनामा में एक होटल और 2 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने बताया कि 4 लोगों को ईरान से सहानुभूति व्यक्त करने और उसके समर्थन में वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी कहा है कि ईरान ने उसके क्षेत्र में कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए। संयुक्त अरब की वायु रक्षा प्रणाली ने कल दागे गए 7 मिसाइलों में से 6 को और 131 ड्रोन में से 125 को हवा में ही कर दिया। इसराइल ने बेरूत में हिजबुल्ला के कमांडर जैद अली जुमा को मार दिया है। जुमा दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला का शस्त्रागार प्रमुख था। इससे पहले इसराइली नौसेना ने हमास के कमांडर वसीम अताउल्ला अली को भी मार दिया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड से हथियार डालने को कहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने भी ईरान को चेतावनी देते हुए हमले रोकने को कहा है। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री इराकची ने कहा है कि ईरान ने अमरीकी प्रशासन से 2 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने इस बीच ही ईरान पर हमला कर दिया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
श्रीलंका ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्री विजेता हेरात ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी के साथ हुई चर्चा में ये चिंता व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री हेरात ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए राजनयिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में कल से 11 मार्च तक होने वाली 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। मध्य पूर्व में 10वीं परीक्षा परिणामों की घोषणा के बारे में अलग से सूचना दी जाएगी। कल होने वाली 12वीं की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। सीबीएसई ने बताया कि संशोधित तिथियों की घोषणा बाद में होगी। परीक्षा बोर्ड कल वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगा और 9 मार्च से निर्धारित परीक्षाओं के बारे में समुचित निर्देश जारी करेगा। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि भारत में कल घरेलू विमानन कंपनियों की कुल 281 उड़ानें रद्द हुई। मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। दोहा में भारतीय दूतावास तत्काल पासपोर्ट नवीकरणीय सहित आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आज और कल खुला रहेगा। दूतावास ने बताया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए 2400 घंटे की हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध कराई गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत को समुद्र में फंसे रूसी तेल की खरीद के लिए 30 दिन की छूट देने की घोषणा की है। ये कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
इस छूट के अंतर्गत भारत को उस रूसी तेल की खरीद की अनुमति दी गई है जो इस समय समुद्र में फंसा हुआ है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पहले से भेजी गई तेल आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय परिवहन जटिलताओं के कारण नष्ट होने के बजाय अपने गंतव्य तक पहुंच सके। अमेरिका के अनुसार इन विशेष तेल खेपों की आवाजाही को संभव बनाकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सहारा मिलेगा और वैश्विक ऊर्जा बाजार के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी। ये छूट एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में दी गई है। ये केवल उन तेल खेपों पर लागू होगा जो पहले से ही परिवहन में है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के प्रति अमेरिका की नीति में संभावित बदलाव के संकेत दिए हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि इस दिशा में प्रगति जारी है और अमेरिका द्वारा अपनी वर्तमान प्राथमिकताएं पूरी करने के बाद बदलाव हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में एक समारोह के दौरान श्री ट्रंप ने क्यूबा के संदर्भ में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टी नोएम को गृह सुरक्षा मंत्री पद से हटाकर उनके जगह मार्क वेन मुलिन को नियुक्त किया है। ये नियुक्ति 31 मार्च से प्रभावी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री मुलिन गृह सुरक्षा विभाग संभालेंगे जबकि सुश्री नोएम पश्चिमी गोलार्ध में सुरक्षा पहल द शील्ड ऑफ द अमेरिकाज की विशेष दूत बनाई गई हैं। भारत ने नेपाल में आम चुनाव सफलतापूर्वक संचालित होने और नागरिकों के उत्साहपूर्वक लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग का स्वागत किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
नेपाल में 60% मतदाता टर्नआउट के साथ मतदान पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के तहत गिनती कल शाम से ही शुरू हो गई है और नतीजे 24 घंटे के भीतर आने की उम्मीद है। काठमांडू में जिला चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम अपडेट के अनुसार रवि लामछेने की RSP पार्टी के उम्मीदवार काठमांडू के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं। आज के दिन मतपत्रों की गिनती समाप्त हो सकती है और विभिन्न जिलों से परिणाम अपडेट किए जाएंगे। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
भारत ने कल रात मुंबई में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
भारत ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे रोमांचक सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए। 254 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 246 रन बनाए। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने 42 गेंद में शानदार 89 रन की पारी खेली जबकि शिवम दुबे ने भी मात्र 25 गेंद में 43 रन की पारी खेली। इसके अलावा हार्दिक पांड्या की 27 रन और तिलक वर्मा की मात्र 7 गेंद में खेली गई 21 रन की तूफानी पारियों ने भारत को 250 का आंकड़ा पार करने में निर्णायक भूमिका निभाई। इंग्लैंड के लिए जैकब बेथेल ने 48 गेंद में 105 रन की शतकीय पारी खेली। संजू
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सांद्र स्तूब ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के प्रति गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। CBSE ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में कल से 11 तारीख तक होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द की। अमरीका ने भारत को फिलहाल समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी और भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।